राधा श्याम सुंदरा दे जय गौरानीताय जय पंचतत्व गौरानीताय जय पंचतत्व गौरानीताय जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदे जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत एस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत एस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय गुरु परंपरा की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षठ गोस्वामी प्रभु की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय संवेद भक्त वृंद की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नितय श्री कृष्ण बलराम श्रीमद भागवत महापुराण की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि वो ऑल ग्लोरीज टू द सेम्बल डिवोटेड हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द सेम्बल डिवोटेड हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द सेम्बल डिवोटेड हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एन गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 6 देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा और आज का श्लोक क्रमांक है 13 तम त्वाम वयम नाथ समुञ्जिहानम्। सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थम् दृष्ट्वा गताने वृत्तमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गांगमं भ तं त्वां वयं नाथ समुञ्जिहानम्। सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थम् दृष्ट्वा गताने वृत्तमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गांगमं भ तं त्वां वयं नाथ समुञ्जिहानम्। सरोजनाभ अतिचिराप्सितार्थम् दृष्ट्वा गताने वृतं अद्य सर्वे गजादवर्ता इव गांगमं भ तं त्वां वयं नाथ समुञ्जिहानम्। सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थम् दृष्ट्वा गताने वृतमद्य सर्वे सर्वे वैष्णवी वैष्णव वैष्णवी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। तम हे भगवान, त्वाम आपको, वयम हम सभी, नाथ हे स्वामी, समुंजिहानम अपनी समस्त महिमा के साथ अब हमारे समक्ष प्रकट होने वाले सरोज नाभ कमल फूल के समान नाभि वाले भगवान, अथवा जिनकी नाभि से कमल निकलता है, अति चिर दीर्घ काल तक इप्सित चाहते हुए अर्थम जीवन के चरम लक्ष्य के लिए दृष्ट्वा देखकर गता अपनी दृष्टि के अंतर्गत निवृत्तम दिव्य सुख अद्य आज सर्वे हम सभी गजा हाथी दब अर्ता जंगल की अग्नि से पीड़ित इव सदृश गांगम अम्ब गंगा के जल से, जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होता है। इसी प्रकार हे कमलनाभ प्रभु, चूंकि आप हमारे समक्ष अब प्रकट हुए हैं, अतीब हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आकांक्षा थी, अतएव आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया है। तात्पर्य, भगवत भक्त श्री भगवान का साक्षात दर्शन पाने के लिए सदैव अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु वे कभी यह मांग पेश नहीं करते कि भगवान उनके समक्ष आए, क्योंकि शुद्ध भक्त ऐसी मांग को भक्ति के विरुद्ध मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में यही पाठ पढ़ाया है, अदर्शनान मर्महताम करोतु वा। भक्त श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, किंतु यदि जन्म जन्मांतर तक श्री भगवान के दर्शन न होने से उसका हृदय टूट भी जाए तो भी वह श्री भगवान से प्रकट होने की मांग कभी नहीं करेगा। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अतएव इस श्लोक में अति चिर इप्सित अर्थम शब्द आया है, जिसका अर्थ यह है कि भक्त भगवान का दर्शन पाने के लिए दीर्घ समय से आकांक्षा करता रहता है। यदि श्री भगवान स्वेच्छा से भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाने पर किया था, जब ध्रुव महाराज ने श्री भगवान को देखा तो उन्हें कोई वर मांगने की इच्छा नहीं हुई। वे श्री भगवान को देखकर ही इतने तुष्ट हो गए थे कि उन्होंने उनसे कोई वर मांगना नहीं चाहा। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। शुद्ध भक्त चाहे श्री भगवान का दर्शन कर सके या नहीं, वह सदैव इस आशा से श्री भगवान की सेवा भक्ति करता है कि कभी न कभी वे उस पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे उसे उनका साक्षात दर्शन हो सकेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यति कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नेता श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चंडारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उन्हीं से कृपा की याचना करता हूँ जो श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं उनको मैं आचार्यों की वाणी को यथारूप में दोहरा सकूं और आप सब भक्त मुझ पे कृपा करिए ताकि मेरे मुख से उसी शब्दों का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर मैं श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद जो बहुत सारे दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन से समन्वित है और अभी समुद्र मंथन शुरू होने से पहले भगवान की प्लानिंग थी क्योंकि देवताओं के पास शक्ति का ह्रास हो गया तो सारे देवतागण जब ब्रह्मा जी को अगुवाई करके भगवान श्री विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं तो भगवान उनको एक तरीका बताते हैं कि हे देवतागण अगर आप पुनः अपने अंदर शक्ति का संचार करना चाहते हो तो अभी दुष्टों का भी आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। कहावत है ना, समय आने पर गधा को भी अपना संबंधी मानना पड़ता है और उससे अपना काम निकालना होता है। तो भगवान भी यही सिद्धांत अप्लाई कर रहे हैं। जो देवता सुर और असुर में कभी भी नहीं बनती, आज भगवान वही बोल रहे हैं इंद्र से जो हे इंद्रदेव स्वर्ग के राजा आप जो है अभी बलि महाराज के पास जाइए, जो भी तो उनके पास जाइए और आप जो है ना उनसे दोस्ती करिए। तब जो है देवता लोग उनसे जाके दोस्ती किए और प्रलोभन दिए। भगवान पहले बता चुके थे उनको बताना जो हम लोग समुद्र मंथन करेंगे उसमें से अमृत आएगा, बहुत सारे चीज की उत्पत्ति होगी। और उसको असुर लोगों को बोलना जो आपको जो चाहिए ले लेना, आपसे जो बचेगा मुझे दे देना, हम सबको दे देना। हम ये नहीं डिमांड करेंगे जो मुझे यही चीज चाहिए। भगवान पहले बोल चुके थे जो आप कुछ डिमांड मत करना, बस जो बोले जैसे बोले वैसे ही करना। और एज इट इज भगवान के नियम का पालन करते हुए, भगवान के संरक्षण में रहते हुए ये सारे के सारे देवता मिलकर के असुर से दोस्ती किए, समुद्र मंथन हुआ और अंत में जो अमृत की प्राप्ति हुई तो केवल और केवल अमृत देवताओं को मिला। ऐसा क्या बात है, मेहनत तो बहुत ज्यादा किया था असुर लोग, लेकिन देवता को ही क्यों अमृत मिला, कौन बताएंगे? उनके पक्ष में भगवान है, लेकिन वो भगवान के शरणागत थे, भगवान के आश्रय में थे, भगवान की देखरेख में काम कर रहे थे, इसलिए उनको सब कुछ की प्राप्ति होती। इसलिए बहुत बड़ा यहां सिद्धांत है, चाहे हम ब्रह्मांड के कितने बड़े विद्वान दर्शन शास्त्र जान ले या विद्वान हो जाएं या बड़े वैज्ञानिक हो जाएं, बड़े यशवान धनवान सब कुछ हो जाएं, लेकिन अगर भक्ति नहीं है, भगवान के हम अनुगत नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रम ए भी केवलम, ये सब सारे के सारे जीरो, कुछ भी नहीं। इसलिए पहला है, बात है जो हमें भगवान के शरणागत होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कोई काम करना है, तो यहां पर मैं यही सिद्धांत लागू किए हैं। भगवान विष्णु ने बताए अभी आपको दोस्ती करना है, उन्होंने एक एनालॉजी भी दिए, जैसे एक बार की बात है, एक चूहा और एक सांप एक जाल में फंस गया था और जाल में फंस करके निकलने का प्रयास कर रहा था, कोई दिमाग सूझ नहीं रहा था। चूहा के दुश्मन है सांप, समझ रहे हैं, चूहा सांप एक साथ में रह नहीं सकता, लेकिन सांप ने क्या किया, चूहा से दोस्ती की, क्योंकि हमें इस जाल से निकलना है, ये भगवान कथा बता रहे हैं देवता लोगों को। दोस्ती कर लिए और बोले चूहा भाई आपके पास तो कुतरने वाली दांत है, इस जाल को काटो और हम दोनों निकल जाएंगे। तो जब चूहा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और चूहा ने जाल को काटा और बोल दिए मैं सर्प हूं, पहले जाके निकलता हूं, अगर कहीं बाहर कोई होगा तो उसको मैं रास्ता से हटा दूंगा काट करके, और आप बाद में निकलना। तो बोले ठीक है आप निकलो, तो सांप पहले निकल गया और यहां पर मैं बगल में भुजंग मार के खड़ा हो गया, और जैसे चूहा भाई साहब निकले उसको टपक भरी बोल कर दिया। तो भगवान भी यही बता रहे हैं, अभी तो तुम असुर से दोस्ती कर लो, लेकिन जब अमृत की प्राप्ति हो जाएगा तब हम टपाक से अपना हरि बोल करेंगे उनका। तो इसी सिद्धांत में भगवान ने समुद्र मंथन की ये लीला किए और उनसे दोस्ती कराए। और इसी जब भगवान वहां पर में प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये अनुनय विनती है, इसी में से ये एक श्लोक है, तम त्वाम वयम नाथ समुंजिहानम। यहां पर मैं बता रहे हैं भगवान के दर्शन का क्या फल होता है, भगवान जब प्रकट हो जाते हैं, दर्शन होते हैं, तो क्या फल होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं व्यक्ति के लॉन्ग डिजायर, जो उसके जीवन का जो गोल है, उसकी जो बहुत लंबे समय से जो उसके मन में इच्छा है, सारे तरह के डिजायर को पूरा करके वो व्यक्ति अंततः खुश हो जाता है, आनंद में हो जाता है। ये भगवान के दर्शन का प्रभाव है। सरोज नाव दावार्त गजा गंगा अम्ब इब हे नाथ। करे हे पद्मनाभ, पद्मनाभ जो भगवान के नाभि कमल से स्वयं जो कमल नाल प्रकट होते हैं, या जिनका नाभि कमल के समान सुंदर है, ऐसे पद्मनाभ भगवान कह रहे हैं जिस तरह दावाग्नि, ये पूरा का पूरा जगत दावाग्नि से झुलझ, दावाग्नि में हम सब फंसे हैं, हम सबके ऊपर इतनी बड़ी कष्ट विपत्ति है, दुखों का एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरा पहले से तैयार होता, अनगिनत दुख पहले से तैयार रहता है। ये दावाग्नि है, पूरा का पूरा यहाँ पे वातावरण में अग्नि लगा हुआ है, और दावाग्नि में संतप्त जब रहते हैं तो उस व्यक्ति को जब थोड़ा सा भी ठंडा जल मिलता है तो उसमें स्नान करके, यानी जब दुखों का बौछार लगा हुआ है उसमें एक छोटा सा भी सुख उनको अमृत के समान आनंद को प्रदान करता है। यहाँ पर मैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे एक हाथी बहुत उसको घाम लगा हुआ है, जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा में आप लोग श्रवण कर चुके हैं, जो हाथी को बहुत घाम लगा, बहुत गर्मी लगा, तो उसने जब ठंडे सरोवर में जाकर के स्नान किया, गंगा जल में स्नान किया, डुबकी लगाया, तो इतना सुखी हो गया जैसे उनको दीर्घ काल से जो चीज की प्राप्ति नहीं हुई थी वो सब कुछ की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी यही बता रहे, हे भगवान, आप बहुत समय से आप हम सबको दर्शन नहीं दिए थे, जो अब आप जो दर्शन दिए हैं, तो आपके इस आविर्भाव को देख करके सारे के सारे देवता एकदम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यही इस श्लोक का भाव है, कह रहे हैं भगवान को बहुत समय तक नहीं देखना ये हमारे लिए क्या है, दुर्दैव है। दुर्दैव मी दृश्य मी जानी नानुराग, भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाल दी, इवन अपने शक्ति से ज्यादा अपने नाम में उन्होंने शक्ति डाले, क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान कृष्ण का अवतार नाम के रूप में है और वो नाम भगवान से अभिन्न है। तो करे पूरी शक्ति डाल देने के बावजूद दुर्दैव हमारा, ये दुर्दैव है, हमारी स्थिति इतनी खराब है जो उस नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं कर पाया हमने। तो यहां पर मैं यही बता रहे हैं, जो भगवान का दर्शन करके बहुत समय तक दर्शन न होना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्दैव है। जब नारद मुनि को जो वेदांतियों के द्वारा, जो नारद मुनि की सेवा से प्रसन्न होकर के वेदांतियों के द्वारा जो एक सूक्ष्म कॉन्फिडेंशियल मंत्र दिया गया था उसका उच्चारण करके नारद मुनि को क्षण भर के लिए भगवान का दर्शन हुआ और उसके बाद भगवान तिरोहित हो गए। वो जो क्षण भर का जो उद्दम पूरा आनंद आया नारद जी को, इतना आनंद मग्न हो गए, प्रणाम करते करते भगवान गायब हो, भगवान से एक सेकंड के लिए बात भी नहीं कर पाए। अब नारद जी इतना प्रयास कर रहे हैं तो कह रहे, नहीं नारद, अब इस जीवन में आपको मेरा दर्शन नहीं होगा। तो कह रहे क्यों, क्योंकि अभी आप जो है इस भौतिक कलमस्ता से भरे हुए हैं, जब आपके हृदय से ये सारे हट जाएंगे ना तब आपको पुनर्दर्शन होगा मेरा। तो यही बात बता रहे हैं यहां पर मैं, जो भगवान बहुत बहुत समय तक दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की भगवान की प्राप्त करने की वो चाह इच्छा और प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं, तो इस प्रयासरत होकर के लौल्यम एकम मूल्यम भगवान का दर्शन क्षण भर के लिए होता है। तो भगवान को दर्शन पाकर के भक्त बहुत ही गदगद हो जाते हैं, उनके जीवन में आनंद का बहार आ जाता है। ऐसा ही दृष्टांत श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11 अध्याय में हुआ है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बहुत समय तक हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में थे और पांडवों के साथ बहुत समय बिता दिए। तो प्रथम बार जब भगवान वहां से निकलना शुरू किए तो उत्तरा आकर के अपने गर्भ की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। फिर जब दूसरी बार चलने लगे भगवान रथ पे सवार होकर के, तो देवी कुंती ने उनको रोक लिया। तीसरी बार जब चलने लगे तो स्वयं युधिष्ठिर महाराज का इतना शोक बढ़ गया, जो भगवान अपने भक्त भीष्म पितामह के महिमा को बढ़ाने के लिए इस जगत में भगवान वहां पे रुक गए। और उसके बाद अंततः भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान के प्रति युधिष्ठिर महाराज का इतना स्नेह और प्रेम है, भगवान के ऐश्वर्य भाव को भूल गए। और भगवान जब अपने द्वारका की तरफ जाने लगे तो एक अक्षोणी सेना अर्जुन कृतवर्मा को साथ करके भगवान को भेजे, जो कहीं भगवान जो महाभारत का युद्ध हुआ है कहीं भगवान का कोई प्रतिद्वंदी न हो, भगवान पे कोई आक्रमण न कर दे, इसलिए भगवान के साथ जो है स्नेह बस युधिष्ठिर महाराज वहां से भेजते हैं। और जब भगवान द्वारका में प्रवेश करने वाले ही थे कि अपने पांचजन्य शंख का जो है उद्घोष करते हैं, उसको सुनने मात्र से, कह रहे जो पांचजन्य शंख का उद्घोष सुनने से कई दानव दैत्य नास्तिक दुश्मन जो हतप्रभ हो जाते हैं, गिर करके एकदम मूर्छित हो जाते हैं, वही पांचजन्य शंख की आवाज सुन करके द्वारकावासी के हृदय गदगद हो गया, इतना हृदय गदगद हो गया, इतना आह्लाद आ गया, जो जिनको सुनकर के पूरे द्वारकावासी जो जिस अवस्था में थे, जो कुछ भेंट उनको तुरंत में प्राप्त हुआ उनको लेकर के भगवान को देख करके, भगवान को अगुवाई करने के लिए, उनको रिसेप्शन करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग बहुत समय से भगवान को देखे नहीं थे, कई महीने से भगवान को देखे नहीं थे, उनकी आंखें एकदम से कह रहे हैं बूढ़ी हो गई, एकदम तरस रही थी, झुलस गई थी भगवान को देखे हुए। उनका कह रहे हैं उनका जो जीवन था द्वारकावासी का, ऐसा लग रहा था जो एकदम शोक संतप्त हो गया था, भगवान के बगैर उनकी जिंदगी वीरान हो गई थी, जैसे मरुस्थल में पानी नहीं होता वैसा उनका जिंदगी हो गया था। अहो सनाथा भवतास्म यद्वयम् त्रैबिष्ट पानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम् तव सर्व सौभगम्। भगवान को बोल रहे हैं द्वारकावासी, हम आपके दर्शन करके कृतार्थ हुए, भगवान के दर्शन इतने समय से जब उनको नहीं हुआ था तो भगवान का दर्शन करके पूरे के पूरे कृतार्थ हो गए। और बोल रहे हैं यद वयम त्रैबिष्ट पान भी करे, मैं सनाथ हो गया, अनाथ जो था, जैसे एक बच्चा पिता माता के बगैर अनाथ हो जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं होता, उसके जिंदगी किधर जाएगी कुछ पता नहीं होता, तो ये सारे के सारे द्वारकावासी अपने आप को भगवान के बिछुओं में अनाथ समझ रहे हैं और कह रहे जब आपका पदार्पण आगमन हो रहा है तो हम सब सनाथा भवता, और इस तरह से हृदय आह्लाद हो गया, जिस भगवान को देवता लोग ऋषिगण भी प्राप्त नहीं कर पाते, जिनके दर्शन के लिए दुर्लभ है, हम आपका वो दुर्लभ दर्शन, इतना सुंदर शरीर, उतना सुंदर स्मित मुख, अपना आपके घुंघराले बाल, वो सब चीज देख करके मेरा हृदय गदगद, प्रेम भरी मुस्कान, मंद मुस्कान और स्निग्ध कृपामयी दृष्टि, भगवान का जो दृष्टि और चितवन जो होता है वो बड़ा ही कृपामयी होता है, और उनका शरीर सर्वांग शरीर सारे तापों को विनाश करने वाला होता और सारे शरीर सुंदरता का पूर्ण से भरा हुआ होता है। करें आपके इस रूप को देख करके हे भगवान हम सब धन्य हो गए। अब कह रहे हैं द्वारकावासी जो हम आपके जो दर्शन नहीं कर पा रहे थे, आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान दीर्घ होता जा रहा था, जैसे सूर्य के बिना आंख, हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों में पावर भी है, लेकिन अगर सूर्य उदित नहीं होगा रात के अंधेरे में क्या हमें दिखाई देता है, सूर्य तो यही आंखें है, रात में भी हमारे पास वही आंखें रहती है, लेकिन हम किसी को नहीं देख पाते, अपने आप को नहीं देख पाते, अपने हाथ को भी नहीं देख पाते, लेकिन जब सूर्य प्रकट हो जाता है तो हम भगवान को सब कुछ को इस जगत में देख पाते हैं। वैसे ही बता रहे सूर्य के समान भगवान की यहां पर में सूर्य के जगह पर में भगवान को रह करके उनकी उपमा दे करके कह रहे हैं हम आपके बिना हमारी जो ये आंखें हमारी जो जिंदगी वीरान हो गई थी तो इनके बगैर कह रहे युगायतम निमेषे न। ये जो निमेष के समान जो युग है जो पल भर के लिए आप हमारे से ओझल होते हो वो हमें युगायतम युग के समान और निमेष के बारे में बता रहे हैं जो एक जो त्रुटि होती है ना एक त्रुटि त्रुटि का मतलब होता है एक सेकंड का 1700 एक सेकंड को 1700 बार डिवाइड किया जाएगा वो जो भाग होगा वो त्रुटि। तो कह रहे इतने समय के लिए आप हमारे से अलग होते हो तब हमें लगता है जो आप युग युगों के बराबर भी हमारे से ओझल हो गए हो। जैसे गोपिया भगवान श्री कृष्ण को जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते हैं तो भगवान को गोचारण के अवस्था में ये गोपियां लोग भगवान को देख नहीं पाते उनकी आंखें जो भगवान को देख नहीं पाती तो ये गोपियां ऐसी हुई हैं जो भगवान के सर्व शुद्ध जो भक्त इस जगत में है जो भगवान के बगैर देखने के बगैर उनको लगता है मेरी जिंदगी एकदम वीरान है। अटति यद भवान नन्हि काननम् त्रुटि युगायते त्वाम् पश्यताम् कुटिल कुंतलम् श्रीमुखम् चते जड उदीक्षिताम् पक्ष्म कृदृशाम्। ये ब्रज की गोपियां भगवान के लिए बता रहे हैं हे भगवान करे अटति यद भवान नन्हि काननम त्रुटि युगायते तम त्वाम पश्यताम। ये मैं आप लोगों को त्रुटि भर के लिए जो एक सेकंड का 1700 महाभाग इतने समय के लिए भी हरी हरी मैं अगर देख नहीं पाता हूं तो मेरे लिए वो समय एकदम जैसे लग रहा है जो हमारे शरीर में प्राण ही नहीं है। और उनको देख करके कह रहे जब आपके उस कुटिल कुंतलम जो एक आपके घुंघराले सुंदर सुंदर बाल आपके श्री सुंदर मुख को नहीं देख पाते तो कह रहे हैं जो इसको बिना देखे हुए पक्ष में क्री दृशाम। तो ये ब्रज की गोपियां ब्रह्मा जी को भी गाली देते हैं ये ब्रह्मा जी एकदम जड़ है उनको जो है ना व्यक्ति की सृष्टि करना नहीं आया। हम सबको भगवान के साथ प्रेम है हम सब भगवान के साथ रह रहे हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए हमें ये आंखों में ये पलक क्यों दिया है। देखिए पलक निमेश मात्र जो एक बार झपकता है उनको भी ये गोपियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और कह रही हैं जो ये ब्रह्मा जी ने हमें जड़ है उनको बनाने नहीं आया हम लोगों को आंखों में जो है इनको देना नहीं चाहिए था ये पलक ताकि हम भगवान को पूर्ण रूपेण बहुत अच्छी तरीके से उनका दर्शन कर सकूं। ब्रह्मा जी को गाली दे रहे हैं तो भगवान के दर्शन में अगर कोई विघ्न आता है तो उनके जो प्रेमी भक्त है ना बड़े ही विह्वल हो जाते हैं उनके हृदय में पदाघात हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी यही बता रहे हैं युगायतम निमेषे न करें हम भगवान को देखने के बगैर ये युग युग के बराबर आशीलस्य विपादरताम पिनष्टुमाम जे करें जो भगवान को देखे बगैर जो ये युग युग के समान जो है गुजरता जा रहा है हमारी जिंदगी कितनी वीरान है। इसलिए भक्तगण को श्रील प्रभुपाद जी ने नियम दिए हैं। सर्वप्रथम भगवान का मंगला दर्शन, जो व्यक्ति मंगला दर्शन करता है ना, उसके जिंदगी में कभी भी अमंगल नहीं होता, वो कभी भी कंगला नहीं होता। जो अटेंड करेगा मंगला, वो ना होगा कभी कंगला, समझ रहे ना। तो ये मंगला दर्शन, भगवान को दर्शन करने के लिए, इस चमड़े की आंख से भगवान को तो हम सब दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान के मंदिर में इसलिए जाते हैं कम से कम भगवान तो हमें देख ले। यही एक बार सूरदास जी को बोले थे, जब प्रत्येक दिन बांके बिहारी मंदिर में जाते थे दर्शन के लिए, तो कह रहे हैं सभी कोई तो दर्शन करने के लिए बांके बिहारी में जरूर आते हैं और दर्शन करते हैं, वो तो दर्शन करते हैं, लेकिन हे सूरदास जी आप क्यों आते हैं, आपकी तो आंखें नहीं है। तो सूरदास जी बोलते हैं सही में भैया मेरे पास तो आंखें नहीं, मैं इसलिए बांके बिहारी के मंदिर में आता हूं जो ये बांके बिहारी मेरा कम से कम देख ले, जो आपका सेवक जो है हाजिरी देने के लिए आ गया। तो दर्शन, भगवान के घर में जब हम जाते हैं भगवान हमें देखते हैं, तो हमारे भगवान के देखने मात्र से हमारे जीवन के सारे कलुषता, हमारे जीवन के सारे अमंगलता नाश हो जाते हैं। तब करें भगवान की यही जो है, भगवान की भक्ति और भगवान के दर्शन का ये फल है। इस श्लोक में भगवान के दर्शन का ही ये फल दिया गया है। करें भगवान का दर्शन हमें कैसे करना चाहिए, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं ईगरनेस एंड पेशेंस के साथ, एकदम उत्साह होना चाहिए, एकदम भगवान को प्राप्त करने की ईगरनेस मतलब आकांक्षा, आकांक्षा होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। जो डिवोटी के पास में यही ईगर रहता है, जो मैं भगवान का दर्शन करूं, भगवान का दर्शन हो उत्कंठा रहता है, लेकिन भगवान को दर्शन देने के लिए डिमांड नहीं करते। कोई जो शुद्ध भक्त है भगवान को, वो भगवान के दर्शन करने के उसके हृदय में बड़ी लालसा होती है बड़े लंबे समय से, लेकिन भगवान को दर्शन देने के लिए प्रार्थना नहीं करते। भगवान अगर स्वेच्छा से भक्त को दर्शन देने के लिए आगे ना, तो यही शुद्ध भक्त है। अगर हमने डिमांड कर दिया किसी तरह की भगवान को दर्शन देने की भी जो डिमांड कर दिया, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं हो। यहां पर मैं ये बता रहे हैं दे डोंट डिमांड अ प्योर डिवोटी वेदर एबल और अनेबल टू सी द लॉर्ड ऑलवेज इंगेजेज इन भक्ति। कह रहे हैं भगवान उनको दर्शन दे या नो दे, चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं मर्महताम करे लंपट ये भगवान श्री कृष्ण मुझे दर्शन दे या न दर्शन दे करके मर्माहट पैदा कर दे, लेकिन फिर भी वो हमारे प्राणनाथ ही रहेंगे। इसलिए हम सब भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, शुद्ध भक्ति का प्रचार करके करने के लिए अपने व्यवहार से दिखा रहे और बता रहे हैं जो प्राणनाथ राधा श्याम सुंदर हमारे हैं, अगर वो हमें दर्शन दे या न दे, हमारा फर्ज यही बनता है जो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में हमेशा लगे रहे। ये नहीं कि भगवान दर्शन नहीं दिए छोड़ो मारो गोली किसी और के शरण में जाते, हमारा ये विश पूरा नहीं हुआ चलो किसी और के घर चले जाते, ये नहीं करें। कितना भी हमें मर्माहत करे, हमारे हृदय को विदीर्ण कर दे, फिर भी हमें भगवान की ही भक्ति में अपने आप को झोंक के लगाना है, नहीं तो भक्ति भक्ति नहीं होगा, शुद्ध भक्ति नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, कह रहे हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं सारे सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, कह रहे हैं तन्मयता से अनुकूलता से भगवान के शरण में जाना चाहिए। और तत्परत्वेन, तत्परत्वेन में मतलब होता है अनुकूल भाव से, तन्मयता से मन में लगा करके, और सर्वोपाधि एक शरीर में हूं मैं ब्रह्मचारी हूं या मैं
गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, सारे उपाधि, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूं, सारे चीजों की उपाधि को छोड़ करके हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और अनुकूल भाव से करें। निर्मलम, निर्मलम का मतलब है ज्ञान और कर्म से भी एकदम अपने आप को हटा करके और देह से, देहस्थ और अंतःकरण से भगवान के, जो भगवान अध्यक्षज भगवान के श्री चरणारविंद, उनकी सेवा में अपने आप को नियुक्त करना है, यही भगवान की भक्ति है। शुद्ध भक्ति का लक्षण यही होता है। भगवान का वो दर्शन करने का कभी भी डिमांड नहीं करता, लेकिन उनके हृदय में हमेशा भगवान को पाने की लालसा रहती है। देखिए ऐसे कई चरित्र हैं भागवतम के अंदर में। ध्रुव महाराज भगवान को जो दर्शन, हरी हरी ये छोड़ रहा है, भगवान के दर्शन करने के लिए जब वो लालायित थे, जो हमें भगवान को अपने हृदय में प्राप्त एकदम स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं ध्रुव महाराज, और थोड़े देर के लिए भगवान के हृदय से जो भगवान निकल जाते हैं, वो प्रश्नी गर्भ सामने प्रकट होते हैं, ध्रुव महाराज एकदम बिह्वल हो जाते हैं, जो भगवान हमारे कहाँ चले गए, भगवान हमारे कहाँ चले गए, एकदम छटपटाने लगे, छटपटाने जैसे पानी बिन मछली नदी के तीर पे छटपटाता रहता है ना, वैसे ध्रुव महाराज एकदम छटपटाने लग गए और आंख खोल करके देख रहे हैं तो वही भगवान सामने प्रकट है। तो उनको देख करके उनकी आंखों में शीतलता, हृदय में बहुत ही प्रेम जागृत हुआ और कह रहे हैं भगवान, भगवान का दर्शन पा करके एकदम पूरा कृतार्थ हो गया, पूरा कृतार्थ हो गया। अब भगवान बोले मेरा दर्शन जो है खाली नहीं जाता बेटा, कुछ मांग लो। तो कह रहे हैं ध्रुव महाराज जो बहुत ही सकाम भक्ति किए, भगवान को जो भक्ति करना शुरू किए, तपस्या करना शुरू किए, तो उनके मन में था मैं ब्रह्मा जी से भी ऊपर का पोस्ट, एम्पायर पावर मुझे मिले। लेकिन जब भगवान की प्राप्ति हुई ना, तो जब भगवान दर्शन दे देते हैं ना, तो हमारे हृदय की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, हमारे अंदर में जो भी लालसा रहती है वो पूर्ण हो जाती है। यही कहा गया भगवान का दर्शन हमारे इच्छा को पूर्ण कर देता है। लेकिन किसी देवी देवता की जब आप उपासना करोगे ना, तो वो जब वर देने के लिए आएंगे ना, तो आपके अंदर में और ज्यादा मांगने की इच्छा बढ़ जाएगी। हिरण्यकश्यपु क्या क्या नहीं मांग ली, फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। लेकिन भगवान यहाँ ध्रुव महाराज को दर्शन दे रहे हैं और ध्रुव महाराज उनके सारे के सारे सकाम भक्ति चले करें, करें मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, करे स्थान अभिलाषी तपसी स्थितो अहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनि इंद्र मुह्यम काचम चिन्वपि दिव्यरत्नम स्वामिन् कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। तो कह रहे यहाँ पर मैं ध्रुव महाराज, मैं तो कांच के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए, हे भगवान आपकी मैं तपस्या करना शुरू किया, लेकिन आपने मुझे काचम विचिन्वपि दिव्य रत्नम, आपने मुझे दिव्य रत्न की प्राप्ति दे दिया, और किसी स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम, मैं तो ब्रह्मा से ऊपर के पोस्ट का पद, इस धरती के लोक लोकांतर का पोस्ट को प्राप्ति करने के लिए मैं आपकी पूजा आराधना में, तपस्या में लीन हुआ। जो भगवान आप देवताओं के लिए, मुनियों के लिए, ऋषियों के लिए दर्शन दुर्लभ देते हैं आप, वो भगवान आप हमारे समान सामने प्रकट हुए हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, मैं वर नहीं चाहता, आपने तो हमारे जिंदगी को कृतार्थ कर दिया। ऐसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को बताते हैं, बेटा मेरा वर देने की मेरी जो है ना, मेरा ये क्या कहते हैं, हमारा नेचर ही है, कुछ मांग लो। तो कह रहे हैं भगवान क्या आप मुझे बनिक समझो, क्या मुझे एक बनिक समझे हो, एक बिजनेसमैन समझे हो, क्या मैंने आपकी तपस्या की आपको प्राप्त करने के लिए, नौ की आपके साथ व्यापार करने के लिए। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्ति भगवान का दर्शन करके, भगवान का एकदम दर्शन करते हैं, उसके दर्शन की कभी भी अभिलाषा नहीं करते। जब भगवान राम, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, जब भगवान राम वन को चले गए तो उनके साथ अयोध्यावासी जब गए, और उनके साथ जब गए तो अयोध्यावासी बना रहे, अनार्थिन सुता स्त्री नाम भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेवान विचिन्तयन्। कह रहे हैं जैसे एक बालक माँ को भूल जाता है, एक बालक इस जगत में आकर के माँ को जैसे भूल जाता है, और जैसे पतियां स्त्रियों को याद नहीं करती, जैसे पतियों को स्त्रियां याद नहीं आती। कभी ऐसा हुआ एक बालक अपने माता पिता के बगैर रह सकता है? छोटा बालक, कह रहे बालक का प्रेम जब भगवान से हो जाता है ना, तो अपने माता पिता को भी भूल जाता है, लेकिन बालक कभी भी माता पिता के बगैर नहीं रह सकता। अब कह रहे कई पतियां, कह रहे पतियों ने अपनी स्त्रियों तक को भी याद नहीं किया। नहीं तो अभी के जो पति हैं, अपने घर जब वो ड्यूटी जाते हैं ना, तो अपने घर फोन करके कई बार आई लव यू बोलते हैं। अरे अमेरिका में हमारे गुरुदेव हिजोलिनेस राधा गोविंददास गोस्वामी महाराज एक कथा के प्रसंग में बता रहे थे, अमेरिका में ऐसा परिपाटी है, अगर कोई ड्यूटी पे गया पुरुष, अगर अपनी पत्नी को पूरे 8 घंटे में 4 बार 5 बार फोन करके नहीं बोला जो आई लव यू, तो वो उसका तलाक हो जाता है। समझ रहे ना, उसको बार बार फोन करना पड़ता है। अब यहां पर मैं कह रहे हैं जो भगवान राम में अयोध्यावासी का इतनी आसक्ति हो गई, जो सारे पति अपने पत्नियों को भी भूल गए, और सारे भाई, जो भाई भाई में जो प्रेम स्मरण रहता है, उस सब को छोड़ करके सारे के सारे अयोध्यावासी केवल और केवल श्री राम, भगवान श्री राम को प्राप्त करने, भगवान श्री राम के चिंतन में ही उनका दिमाग लगा रहता। तो ये जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान के चिंतन में, ध्यान में उनकी उपासना तपस्या करते रहते हैं, भगवान से ये भी नहीं पूछते जो भगवान आप कब दर्शन दोगे। शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, कभी भी कोई डिमांड ना करते हैं। ये नारद भक्ति सूत्र में नारद जी यही बात बता रहे, सान काम काम यह माना निरोध रूपत्वात्। कह रहे शुद्ध भक्तिमय सेवा का प्रतिपादन तभी होता है, जो शुद्ध भक्ति का मतलब ये नहीं होता जो काम की उत्पत्ति करना, मेरे अंदर में डिजायर भौतिक इच्छाएं को प्रतिपादन करना, नहीं। भगवान का जब शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाता है ना, उनके अंदर व्यक्ति डिजायर लेस हो जाता है, सभी चीजों की पूर्ति हो जाती है, ऐसे शुद्ध भक्त के ही। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, ऐसे शुद्ध भक्त के चरण के जब दर्शन हो जाते हैं ना, उनके चरण के पद रज हमारे सिर पे आते हैं, शरीर में लगते हैं, तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं। हमें भगवान की भक्ति इस विचार से करते रहना चाहिए, जो भगवान हमें दर्शन दे या न दे, लेकिन भक्ति में लगातार लगी रहने चाहिए, और कभी न कभी यही विश्वास के साथ, रक्षिष्यति इति विश्वासे गोप तृप्ते वर्णम तथा, हमें विश्वास होना चाहिए जो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे, भगवान एक दिन हमें दर्शन जरूर देंगे। हमें कभी भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई भक्त बोले अरे प्रभु जी 30-35 साल से भक्ति कर रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या करता है, भक्ति का कोई मतलब है? ऐसा नहीं, कई जन्म लग जाते हैं भक्ति करते करते। भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है, भक्तों की कृपा से होती है, वो पल कब आ जाएगा हमें पता नहीं। इसलिए हमें लगातार अपने तरफ से उत्साह, एकदम भगवान को प्राप्त करने की लालसा, उत्साह होना चाहिए, लेकिन डिमांड नहीं करना चाहिए जो हे भगवान आप हमारे ऑर्डर के सप्लायर बन जाओ, आप आओ मुझे दर्शन दो, नहीं। भगवान की भक्ति में अपने आप को झोंक देना चाहिए एकदम नियोजित करके, यही शुद्ध भक्ति। तो यहाँ पर मैं भगवान के दर्शन का फल है, व्यक्ति सभी तरह के कामनाओं से डिजायरलेस हो जाते हैं। इस 13 नंबर श्लोक में देवतागण ब्रह्मा जी के साथ यही भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो जैसी हमारी मति अल्प मति से मैं इस श्लोक का आप लोगों के समक्ष विवरण रखने का प्रयास किया, बहुत शास्त्रोक्ति गलती हुई होंगी, मुझे क्षमा करना। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न हो तो पर्सनली पूछ लीजिए।